गोवर्धन पूजन की परंपरा ब्रजमंडल में किस प्रकार प्रारंभ हुई? प्राचीन काल से ही ब्रजवासी इस अवसर पर इंद्र की पूजा किया करते थे। ऐसी मान्यता है कि इंद्र मेघों के स्वामी हैं। इंद्र की अनुकंपा से वर्षा होती है, वर्षा से वनस्पति पैदा होती हैं, खेती होती है। इन्हीं वनस्पतियों, धन धान्य और खेती में पैदा हुए धान्य से सृष्टि का भरण पोषण होता है, सृष्टि चलती है, सुख संपदा के दूसरे साधनों का विकास होता है। इसीलिए कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण और विशेष रूप से सभी ब्रजवासी और कृषि व्यवसाय पर आश्रित रहने वाले सभी बंधु इंद्र की पूजा एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके इंद्र की पूजा किया करते थे। जब इंद्र की पूजा की तैयारियां होने लगीं तो भगवान कृष्ण सबके अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, अभी छोटे हैं, बालक रूप में। तो उन्होंने अपने बड़े गोप जनों से जिज्ञासा प्रकट की। कथ्यताम मे पितः कोयम् संभ्रमो व उपागतः, किं फलम कस्य चोद्देशः, केन वा साध्यते मखः। भगवान पूछते हैं, नंद बाबा आदि बड़े गोपों से पूछते हैं, पिताजी आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है, इसका फल क्या है, किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं, पिताजी आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। इसके साथ साथ प्रभु ने यह प्रश्न क्यों पूछा, अपना पूछने का उद्देश्य भी स्पष्ट करते हैं। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति, विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् तथा न विदुषो भवेत्। भगवान कहते हैं यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है, उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं वैसे वे समझ के नहीं। अर्थात यदि हमें पता ही नहीं है, अगर हमें पूरा ज्ञान नहीं है कि हम एक कर्म क्यों कर रहे हैं, हम एक यज्ञ क्यों कर रहे हैं, तो यज्ञ में सिद्धि मिले या असिद्धि मिले उसका हम कोई विवेचना उसकी हम नहीं कर सकते। तत्र तावत् क्रिया योगो भवताम किम विचारितः, अथवा लौकिकस्तन में प्रच्छत साधु भन्यताम। भगवान कहते हैं अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह सुधदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है, मैं यह सब जानना चाहता हूँ, आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बताइए। नंद बाबा ने जो अपने बड़ों से परंपरा से जो सुनते आए थे, जो देख रहे थे, जैसी रीति रिवाज थी, लोक रीति थी, वो भगवान को विस्तार से उन्होंने समझाई कि बेटा भगवान इंद्र मेघों के स्वामी हैं, भगवान इंद्र की अनुकंपा से वर्षा होती है, उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा हम लोग पूजा किया करते हैं, उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं, यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम लोभ भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। नंद बाबा के ऐसे विचार सुनकर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। हमें से अधिकांश लोग, हमें से अधिकांश भक्तजन यह जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग आदि अनेक प्रकार के योगों के उपदेश दिए थे और अर्जुन को अंत में प्रेरित किया था कि आप ये धर्म युद्ध पूरे मनोयोग से इस धर्म युद्ध में आप भाग लें। इस तरह के भगवान कृष्ण के जो उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में समाहित हैं वो किसी न किसी रूप में हम लोग सभी उनके बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। यहां आप देखिए बालक रूप भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में अभी छोटे हैं, गोवर्धन पूजा की तैयारी हो रही है, इंद्र के यज्ञ की तैयारी हो रही है। भगवान कृष्ण नंद आदि बड़े गोपों को कर्म का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि पिताजी कर्मणा जायते जन्तुः, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है, उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। किमिन्द्रेणे भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनां अनीशे नान्यथा कर्तुं स्वभाव विहतं नृणाम्। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते तब उनसे क्या प्रयोजन। मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहां तक कि देवता असुर मनुष्य आदि को लिए हुए सारा जगत स्वभाव अर्थात पूर्व संस्कारों में ही स्थित है। तस्मात् संपूजयेत कर्म स्वभावस्थः स्वकर्म कृत अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्। कर्म का महत्व समझाते हुए भगवान कृष्ण नंद बाबा आदि गोपों से कहते हैं इसलिए पिताजी मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे और जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही उसका इष्ट देव होता है। ध्यान देने योग्य प्रसंग है, इसको हम एक बार ध्यान करें कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्। मनुष्य की जीविका सुगमता से जहां से चलती है वही उसका इष्ट देव होता है। अर्थात यदि हम व्यापारी हैं तो जो हमारा व्यापार करने का स्थान है और जिन वस्तुओं का हम व्यापार करते हैं वह व्यापार ही हमारा इष्ट देव है। और यदि हम किसी कार्यालय में कर्मरत हैं तो उस कार्यालय में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को करना ही हमारे लिए ईश्वर की पूजा है और कार्यालय ही हमारे लिए पवित्र मंदिर के समान है। ऐसा प्रभु का निर्देश है, प्रभु का निर्देश है कि जहाँ से हमारी जीविका सुगमता पूर्वक चलती है वो ही हमारा इष्ट देव है, अर्थात उनके आदेश का ही हमें पालन करना चाहिए, उनके प्रति ही हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। जिस इंद्र को हमने देखा ही नहीं कि कौन इंद्र हैं, कैसे वर्षा करते हैं, उस इंद्र से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। यह त्रिविध प्रकार का संपूर्ण जगत पुरुष और प्रकृति के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है।
रजसा चोदितो मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः तजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्रम् महेन्द्र किं करिष्यति। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं, उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है, वह भला क्या कर सकता है? प्रभु ने ऐसा प्रश्न किया और प्रश्न के साथ साथ उत्तर देते हैं। अपने पिताजी को समझाते हुए कहते हैं, पिताजी न तो हम राजा हैं, हमारे पास किसी देश का राज्य है, न हमारे कोई बहुत बड़ी नगर हैं, बहुत बड़ी अट्टालिकाएं हैं, कुछ ऐसा नहीं है। हमारे पास तो हमारा गांव भी बहुत बड़ा नहीं है, हम तो वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसीलिए हम लोग गऊओं ब्राह्मणों और गिरिराज गोवर्धन का यज्ञ करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। देखिए प्रभु का स्पष्ट व्याख्या करना और उस व्याख्या के द्वारा अपने वनवासी चरित्र की स्थापना करते हुए, जिसे हम आजकल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अपने पिताजी एवं जो अन्य बड़े गोप थे उनके साथ में चर्चा करते हुए इसी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की महत्व को स्थापित किया है और इसी के लिए सबको प्रेरित किया है कि हम किसी काल्पनिक देवी देवता की पूजा करने के स्थान पर, हमारे प्रत्यक्ष देव हैं, नदी हैं, वृक्ष हैं, वन हैं, पर्वत हैं, जिनसे हमारी जीविका चलती है, हमारी गऊएं जिस गोवर्धन पर्वत की तलहटी में चरती हैं, जिस गोवर्धन पर्वत के झरनों से हमें मीठा पानी, मीठा जल पूरे समय उपलब्ध रहता है, जिन वनों से हमें अनेक प्रकार की संपदा, वन संपदा की प्राप्ति होती है, जिस पर्वत की तलहटी के खेतों में हम खेती करते हैं, वही हमारे पूज्य हैं। गोवर्धन पर्वत तो एक प्रतीक है पूरी प्रकृति के, प्रकृति अर्थात नदी, झरने, वन, वृक्ष, पर्वत, क्योंकि गोवर्धन ही इस सारे परिदृश्य में, गोवर्धन ही सबसे विशाल हैं, स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। और यदि आप विचार करें और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वालों एक्सपर्ट्स लोगों से पूछें तो वो बताएंगे कि ये पर्वत ही होते हैं जो प्रकृति का संरक्षण करते हैं। पर्वत के आसपास एक विशेष प्रकार का जलवायु निर्धारित होती है, जिस जलवायु में वृक्ष, वन, नदी, झरने स्थित होते हैं। गोवर्धन पूजन अर्थात प्रकृति का पूजन, और ये तो स्पष्ट है कि जिस प्रतीक का हम पूजन करते हैं उस प्रतीक को हम पवित्र मानते हैं, पवित्र मानते हैं अर्थात हम उसकी रक्षा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसको नष्ट नहीं होने देते हैं। तो गोवर्धन पूजा का जो अनुग्रह भगवान कृष्ण कर रहे हैं अपने ब्रजवासियों से, इस अनुग्रह का अर्थ है कि वह भगवान की इच्छा है कि हम अपने वातावरण और अपने आसपास की वन संपदा का संरक्षण करें और इसको पूज्य माने, क्योंकि इसी से हमारी जीविका चलती है। अब पूजन कैसे करें? भाई गोवर्धन जी का पूजन करना है तो पूजन किस प्रकार से करना है? कहते हैं जैसे इंद्र का पूजन करने के लिए यज्ञ के लिए सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं सामग्रियों से हम गोवर्धन पर्वत के पूजन के लिए यज्ञ करें। अनेक प्रकार के पकवान बनाए, खीर, हलवा, पुआ, पूरी से लेके सामान्य मूंग की दाल, रोटी, कढ़ी, चावल, सब कुछ अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाएं, ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए, वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए और उन्हें अनेक प्रकार के अन्न, गऊएं और दक्षिणाएं दी जाए, और भी जो हमारे गरीब साथी हैं दलित समाज है, चांडाल हैं, पतित हैं, इन दलित समाज को भी, और जीव जंतु कुत्ते हैं या अन्य जीव हैं, इन जीवों को भी यथा योग्य वस्तुएं, अर्थात जो जिसका भोजन है, जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है, दलित समाज के व्यक्तियों के लिए भोजन, वस्त्र, द्रव्य, जैसे ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई है, उसी प्रकार से ब्राह्मणों को जिस प्रकार से भोजन कराया गया है, उसी प्रकार से उनको भी भोजन दें, वस्त्र दें, द्रव्य दें, कुत्तों को भोजन दें, गायों को चारा दिया जाए, और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। गिरिराज को भोग लगाया जाए, गिरिराज गोवर्धन की पूजा की जाए, और गिरिराज को भोग लगा के ये प्रसाद सभी लोग ग्रहण करें। क्योंकि भाई जब हम पूजा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं, हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए बड़े अच्छे से सज धज के और प्रसाद पाके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाए, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की जाए। भगवान कहते हैं, एतन्मम मतम तात क्रियताम यदि रोचते अयम गो ब्राह्मणादीनाम मह्यम च दयितो मखः। कहते हैं भगवान, कहते हैं पिताजी, मेरी तो ऐसी सम्मति है, यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। इस प्रकार प्रभु की राय, इस प्रकार प्रभु का ये एक मत जानने के बाद में तो गोप लोगों ने विचार किया, उन्होंने कहा, अरे भाई ये कन्हैया तो ठीक कह रहा है, इंद्र को हम जानते नहीं, कौन है, कहाँ रहता है, क्या वास्तव में इंद्र ही वर्षा करता है या जैसे हमारा कन्हैया कह रहा है ऐसे वर्षा होती है, जिसको हम जानते ही नहीं, जो कभी हमारे सामने आए नहीं, हम ही सिर्फ पूजन पूजन उनका पूजन करते रहें, ये बात बहुत अच्छी लगती नहीं है। तो गोप लोगों ने निश्चित किया कि जैसे कृष्ण कह रहे हैं वैसे ही किया जाएगा और गोवर्धन पर्वत की ही पूजा की जाएगी। अब तो गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारियां होने लग गईं। तो जैसे जैसे भगवान ने कहा था उसी उसी प्रकार से सबसे पहले वहां पे यज्ञ किया गया। ब्राह्मणों ने बड़े स्वर से, उच्च स्वर से बड़ा स्वस्ति वाचन किया और गिरिराज को, और गिरिराज के सामने यज्ञ किया गया। ब्राह्मणों को भेंटें दी गईं, सभी आसपास के लोगों को और ब्रजवासियों ने भोजन किया, प्रसाद पाया, दलितों को, पतितों को, सभी को यथा योग्य भोजन कराया गया, द्रव्य दिया गया, दान दिया गया, और गोवर्धन जी को जो बहुत सारे पकवान बनाए गए थे वो गोवर्धन जी को अर्पित किए गए। तो गोवर्धन जी को ये सारे पकवान अर्पित किए गए। देखिए भगवान की लीला, भगवान तो बड़े ही चंचल हैं, चपल हैं। कृष्ण भगवान की ये विशेषता है कि कुछ ऐसा करते हैं कि ब्रजवासी चकित हो जाते हैं। इस अवसर पर क्या किया भगवान ने, कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः शैलोस्मित ब्रुवन् भूरि बलिमादद्बृहद्वपु। कृष्ण भगवान ने ऐसी लीला की कि एक विशाल रूप धारण करके गिरिराज के ऊपर प्रकट हो गए। गिरिराज के ऊपर एक विशाल रूप धारण करके प्रकट हो गए और मैं गिरिराज हूँ कह के जो उनको पकवान आदि अर्पण किए गए थे उनका भक्षण करने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने गोपों से कहा था कि आपने इंद्र को देखा नहीं, कौन है, कहाँ रहते हैं, गोवर्धन हमारे सामने है। अब भगवान प्रकट हो गए वहां गोपजनों को ये विश्वास दिलाने के लिए, देखो ये गोवर्धन है, ये गोवर्धन जो पर्वत है, ये पर्वत कोई पत्थर और जड़ नहीं है। आपको तो दोज पत्थर और वृक्ष दिखाई देते हैं, तो जड़ है गोवर्धन, जड़ नहीं है गोवर्धन, ये एक जीवित देवता है। ये देखो प्रकट हो गए ना, आपने इनकी पूजा की, इनकी प्रार्थना की, इनको बुलाया, देखो प्रकट हो गए, और आपने जो इनको पकवान अर्पित किए हैं उनका भोग लगा रहे हैं। तो गोपजन सब बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान कृष्ण भी उनके साथ थे, सब गोवर्धन महाराज की जय जयकार करने लगे। तो गोवर्धन कौन है? गोवर्धन तो कृष्ण स्वयं ही गोवर्धन, गोवर्धन कृष्ण से अलग नहीं है। गोवर्धन की पूजा अर्थात कृष्ण की पूजा, गोवर्धन की प्रदक्षिणा अर्थात कृष्ण की प्रदक्षिणा। सभी जय जयकार में बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। इस प्रकार से जय जयकार करते हुए सभी ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में यज्ञ किया, दान दक्षिणा दी, गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। इस प्रकार एक गोवर्धन पूजन का उत्सव आयोजित करके सभी ब्रजवासी ब्रजमंडल में लौट आए। इधर जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तो बड़े क्रोधित हुए, बड़े क्रोधित हुए। और जब उनके गुप्तचरों ने उनको ये खबर दी कि पूजा आपकी इसलिए बंद की गई है कि ब्रजमंडल में एक कृष्ण नाम का बालक है, और वो बालक कुछ कुछ उल्टे सीधे काम करता रहता है, कुछ उसने किया है ऐसा, बोलता बहुत ज़्यादा है, गाय चराता है साथियों के साथ, बीच बीच में जंगल में कभी कभी कोई छोटे मोटे जानवरों से मुठभेड़ हो जाती है, तो कृष्ण के साथ उसके सखाओं के दल मुठभेड़ में कभी घोड़ा मार दिया, कभी गधा मार दिया, इस तरह की कुछ कुछ छोटी मोटी घटनाएँ होती रहती, आमतौर पर होता है। जो लोग जंगल में जाते हैं, जंगल के आसपास रहते हैं, वो छोटे जानवरों से डरते नहीं है। आपने पढ़ा होगा जलती लकड़ी लेके शेर को भगा देते हैं, ऐसे हमारे वनवासी हैं जिनके गांव वन के किनारे हैं, वन के आसपास जिनकी झोंपड़ियां बनी हुई हैं, 5-10 परिवारों का एक छोटा सा समूह होता है, वहां रहता है, वो सब इतने निडर और निर्भीक होते हैं कि शेर भी आ जाए कुल्हाड़ी लेके शेर का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं, शेर से डर के घर में नहीं बैठते, उसको दूर तक खदेड़ के आते हैं। इसलिए जो इंद्र के गुप्तचर थे उन्होंने बताया कि कभी बगला मार दिया, कभी कोई सांप निकल आया जंगल में वो मार दिया, ऐसे तरह की कुछ कुछ चीज़ें हो गई हैं उनसे। वो ब्रजवासी समझते हैं कि ये कोई बड़ा चमत्कारी बालक है और वो जैसे कहता है वैसे मानते हैं। तो उसी वाचाल ने कह दिया कि अरे इंद्र कौन है? ये गोवर्धन पर्वत है, ये इसके झरने हैं, ये इसके पेड़ हैं, हमारा इन्हीं से काम चलता है, हमारा तो यही भगवान है, ऐसे कह के उसने आपकी पूजा बंद करवा दी। इस तरह से अनेक प्रकार के प्रलाप, अनेक प्रकार की कहानियां सुना के इंद्र को उन्होंने क्रोधित कर दिया। इंद्र बहुत क्रोधित हुए। भगवान का तो उद्देश्य ही था इंद्र को क्रोधित करना। क्यों क्यों क्रोधित करना? इंद्र का मान मर्दन करना चाहते थे। भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मण एव विलियते, कर्म से ही जंतु पैदा होता है, जीव पैदा होता है, कर्म में ही विलुप्त हो जाता है, कर्म के अनुसार ही उसको सारे फल मिलते हैं, तो इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? ये बड़ा स्पष्ट निर्देश भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कर्मयोग पे बहुत कुछ उन्होंने व्याख्या करके अर्जुन को समझाया है, कर्म का महत्व समझाया है, निष्काम कर्म का महत्व समझाया है, ब्रजवासियों को भी समझा। अरे आप खेत में बीज डालोगे तो खेती होगी, खेत में बीज नहीं डालोगे तो फसल नहीं होगी, अर्थात आप कर्म करोगे तो फल मिलेगा, नहीं कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा। और ऐसी कोई शक्ति प्रकृति में नहीं है कि आप कर्म करें और आपका फल न मिले, आपके कर्म का फल कोई और ले जाए, ऐसा नहीं होता है। इंद्र तो बड़े क्रोध में थे। इंद्र क्रोध में क्या कहते हैं? वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्युमुपाश्रित्य गोपामे चक्रप्रियं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन ब्रजवासियों ने, इन ग्वालों ने, अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। इंद्र ने क्रोधित होके प्रलय काल के मेघों को बुलाया। सांवर्तक नाम का एक गण, एक समूह है मेघों का, जो जब प्रलय के समय, जब धरती पर वर्षा जो होती है, जल प्रलय होती है, सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है इतनी भारी वर्षा, उस समूह को इंद्र ने आज्ञा दी, आप चलो जाके ब्रजमंडल के ऊपर इतनी भारी वर्षा करो कि ये जो ग्वाल गोप ग्वाल वहां ब्रजमंडल में रहते हैं, जिनको बड़ी घमंड हो गया है कृष्ण के साथ रहने का, इनके ऊपर पानी बरसा बरसा के इनको मटिया मेट कर, और मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं, पीछे पीछे आप आगे चल के वर्षा करो, मैं अपने ऐरावत हाथी पर चल के वज्र धारण करके आ रहा हूं, और इस वज्र के द्वारा मैं ब्रज का नाश करने के लिए आपके साथ आ रहा हूं, और मेरे साथ में महापराक्रमी मरुद गण भी है। अब आप सोचिए, मरुद गणों के साथ प्रलय काल के मेघ, सांवत्तक नाम के मेघ ब्रज मंडल पर आकर भारी वर्षा, आंधी, बिजलियां चमक रही हैं, आंधी बड़े वेग से चल रही है, बड़े बड़े ओले बरस रहे हैं, बादलों से जल की धारा बूंदों के रूप में, जल नहीं बरस रहा, धारा के समान मोटी मोटी जल की धाराएं आसमान से गिर रही, इस प्रकार की भारी वर्षा की विभीषिका ब्रजमंडल के ऊपर इंद्र ने आक्रमण कर दिया। ब्रजवासी भारी संकट में, भारी ठंड, कपकपाने लग गए, कहीं पांव रखने को जगह नहीं, पानी पानी, पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया, पशुओं को कहां बांधें, बच्चों के लिए क्या व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से करें, आग नहीं जल रही है, ईंधन सारा भीग गया है, ठंड इतनी हो रही है, किस प्रकार सर्दी से बचें, और वर्षा है कि बंद होने का नाम नहीं लेती, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वर्षा कभी बंद होगी, और जोर जोर से होती जा रही है, और जोर जोर से, अंधकार छा गया, दिन के समय अंधकार काले में, ब्रजवासी ब्रजवासी क्या करते, ब्रजवासी तो कृष्ण के आश्रित थे, जब उनको अपनी शक्ति और अपने संबल, उनका मनोबल टूटने लगा, अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर पाए, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो प्रातुमर्हसि देवान् कुपिताद् भक्त वत्सलो। प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो, महाभाग हो, बड़े भाग्यवान हो, अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। कृष्ण भाग्यवान क्यों है, कृष्ण को ब्रजवासी क्यों कहते हैं कि आप बड़े भाग्यवान हो, ध्यान करिए, जब कृष्ण छोटे से थे, पालने में झूल रहे थे, तो कौन आया था, पूतना आई थी, पूतना नाम की राक्षसी आई थी, जिसने अपने स्तनों पर विष लगाया हुआ था, बड़ा सुंदर रूप रख के आई थी, और कृष्ण को, बाल कृष्ण को, अभी शिशु है, अभी बैठते भी नहीं है, इतने छोटे हैं कि बस पालने में झूलते रहते हैं, बैठते भी नहीं है, इतने छोटे हैं कृष्ण, इतने छोटे से कृष्ण को गोदी में ले लिया, गोदी में ले लिया, और विषपान कराने की चेष्टा करने लगे, तो अपने स्तन से लगा लिया। कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने पूतना के प्राणों का हरण तो किया, लेकिन उसे मोक्ष दिया, मातृ की गति, मातृ की गति, माता के समान उनका सम्मान। खैर, लंबी कथा है, तो कृष्ण के ऊपर बाल्यकाल से ही अनेक प्रकार की आपदाएं आती रहीं, वो तो भगवान है, उनकी तो लीला है, और कृष्ण सारी आपदाओं से उबरते रहे, इसलिए ब्रजवासी कहते हैं आप बड़े भाग्यवान हो, आप बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि सामान्य शिशु तो इस प्रकार की एक छोटी सी आपत्ति को भी नहीं सहन कर सकता। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो तुमर्हसि देवान् कुपिताद् भक्त वत्सलो। हे प्रभु, आप बड़े भाग्यवान हो, आपके भाग्य से ही हमारी रक्षा होगी, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक आप ही हो, भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध से अभी अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। तो भगवान तो सब कुछ जानते थे, ये तो उन्हीं की लीला थी, सब कुछ तो उन्हीं का किया कराया था, मन मन में कहते हैं, अच्छा इंद्र ठीक है, हमने जो किया सो किया, अब तुम्हारा भी बल देख लिया, और तुम जो कर रहे हो, तुम अपने आप को शक्तिशाली मानते हो, लोकपाल मानते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी जो मूर्खता है, इसका मुझे, आपकी ये मूर्खता मुझे दूर करनी है, इसीलिए ये लीला हो रही है। देवताओं को तो सत्य प्रधान होना चाहिए, देवताओं को, देवताओं के अंदर सात्विक गुण होने चाहिए। बदला लेने की भावना, पद का अभिमान और प्रजा का शोषण, इस तरह की भावना देवताओं के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हम कहते हैं इस कथा को कि इंद्र का मान मर्दन किया प्रभु ने, तो भाई प्रभु किसी का मान मर्दन क्यों करते हैं? प्रभु को क्या कारण है? आपने अनेक कथाएं इस तरह की सुनी हैं। एक बार नारद ऋषि को अभिमान हो गया था, बड़ा अभिमान हो गया था, मैं बड़ा भक्त हूँ। तो एक लीला रचाई प्रभु ने और उनका मान मर्दन कर दिया। तो नारद ऋषि जब पूछते हैं उनसे कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, जब उनको ज्ञान हुआ, तो प्रभु का एक ही उत्तर होता, आप मेरे प्रिय हो, आप मेरे प्रिय हो, आपके चरित्र का मार्जन करना मेरा कर्तव्य है। अगर आपके अंदर कोई विकृति पैदा होती, आपके चरित्र में कोई विकृति पैदा होती, अभिमान आ गया है आपको, ईगो आपकी बड़ी हो गई, आपके अंदर पद का और शक्ति का अपव्यय आप करने लग गए हैं, इस अभिमान के वशीभूत, और लोक कल्याण के पथ से हट गए हैं, तो ये मेरा व्रत है, आप मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं आपका मान मर्दन करूंगा। आपके अंदर ये अभिमान रहना नहीं चाहिए। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। जैसे छोटे छोटे बालक, आपने देखा ना, बरसात में मिट्टी गीली हो जाती है और जगह जगह जो पुरानी लकड़ी पड़ी होती है वो फूल के उसके ऊपर एक छतरी सी बन जाती है, वो एक अजीब सी चीज बरसात के बाद दिखती है, अजीब सी वस्तु होती है, बालकों को बड़ा कौतूहल होता है, वो जाते हैं और खटाक से उसे तोड़ लेते हैं, उसे खेलते रहते हैं बिना प्रयास के, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता, एकदम कच्ची होती है, क्योंकि वो ऐसा कोई बीज से जमा हुआ पौधा नहीं होता। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से बिना प्रयास के ऐसे उखाड़ लिया जैसे बालक उस कुकुर मुत्ते को उखाड़ लेते हैं और उसको अपने सर के ऊपर हाथ उठा के छत्र के समान धारण कर दिया। और गोपों से कहने लग गए, माताजी, पिताजी, ब्रजवासियों, मित्रों, अपनी गौओं और सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ और डरना नहीं, ये मेरे हाथ से पर्वत गिर जाएगा ऐसा आप मत सोचना। जब तक ये आंधी पानी डरता रहेगा, गिरता रहेगा, आंधी पानी नहीं रुकेगा, तब तक मैं इस पर्वत को लिए रहूंगा। एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, आप बिल्कुल मत डर। भाई ब्रजवासियों को क्या चाहिए? ब्रजवासी तो भगवान कृष्ण के पूर्ण रूप से आश्रित है। तो जो कृष्ण ने कह दिया ठीक है, कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा मत करो, तो उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़ दी। इस प्रकार का उनका पूर्ण समर्पण। तो कृष्ण कहते हैं कि आ जाओ इस पर्वत के नीचे, आ जाओ इस गड्ढे में आके बैठ जाओ। सारे ब्रजवासी अपनी गऊ आदि को लेके, अपनी सब सामग्री को लेके, बच्चों को लेके उस पर्वत के, गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में जाके बैठ गए और उस विशाल गड्ढे के अंदर उनके सारे कार्यक्रम यथापूर्व चलते रहे। वहां पे उन्होंने भोजन बनाया, बच्चे भोजन कर रहे हैं, बच्चे वहां खेल रहे हैं, गायों को दूह रहे हैं, गायें घूम रही हैं, क्योंकि गोवर्धन तो बड़ा विशाल विशाल पर्वत, थोड़े से ब्रजवासी, यानी पूरा गांव, पूरा ब्रजमंडल के प्राणी उस गोवर्धन पर्वत में समा। इंद्र ने अपनी वर्षा, अपने काल मेघों की, सांवर्तक मेघों की वर्षा, मरुदगणों की चलाई हुई आंधी, कड़कड़ाती हुई बिजली, इस सब को जब प्रभावहीन होते हुए देखा, ने अपने आक्रमण की तीव्रता और बढ़ा दी, और बढ़ा दी। देखा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो तो ब्रजमंडल को नष्ट करने के लिए चले थे, यहां देखते हैं कि पूरा ब्रजमंडल एक उत्सव का सा माहौल बन गया, उत्सव का सा वातावरण बन गया। सब लोग वहां इकट्ठे हैं, कृष्ण अपना गोवर्धन उठाए हुए हैं, उसके नीचे सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बाहर वर्षा हो रही है, आंधी चली, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, सब वहां अपना आनंद मग्न है, बस कृष्ण को देख रहे हैं। एक टक कृष्ण को देख रहे हैं कि देखो कन्हैया हमारा पर्वत को उठाया, कन्हैया ने पर्वत उठाया जो आज तक न देखा न सुना कि कोई पर्वत को उठा सकता है, वो काम कन्हैया ने करके दिखाया, देखो पर्वत उठाए, मग्न है ब्रजवासी। कृष्ण योगानुभावम तम निशाम्येन्दोति विस्मित निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान मेघान सन्निवारयत। जब इंद्र ने देखा कि मेरा तो जितना भी जितनी भी शक्ति थी कृष्ण की योग माया की लीला के सामने सब कुछ शून्य है, तो उनको ज्ञान हुआ, आश्चर्य हुआ, ज्ञान हुआ। उन्होंने मेघों को वर्षा करने से रोक दिया, मेघों से कहा वर्षा बंद कर दो, मधुर गुण से कहा आधी चलाना बंद कर दो, मैं समझ गया हूं ये कौन है, ये क्या लीला है, ये मैं समझ गया हूं, और हमसे बड़ी गलती हुई, हमसे बड़ी गलती हुई कि हमने इनको बाचाल बालक मूर्ख समझ के जो सृष्टि के स्वामी हैं उनको हमने चुनौती दी, आप वर्षा बंद करें। वर्षा बंद हो गई तो भगवान ने देखा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, बादल छट गए हैं, सूर्य निकल आया है, धूप आने लग गई है, तो गोपों से कहा भैया अब आप इस पर्वत के गड्ढे में से बाहर निकलो और अपने गांव घर पे जैसे हम पहले रहते थे उस प्रकार से घूमो फिरो और देखो अब कोई चिंता की बात नहीं है। तो गोप भगवान की आज्ञा लेके स्त्री बच्चे बालक गाय आदि सभी सामग्री अपने गाड़ियों पे लाद लाद के सब बाहर पर्वत से निकल आए। जब पर्वत के गड्ढे में से निकल आए तो भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। सबके देखते देखते जैसे अनायास भगवान ने उस पर्वत को उखाड़ के उठा लिया था, छत्र की तरह से धारण कर लिया था, देखते देखते खेल खेल में उस पर्वत को उठा के उसकी जगह पे स्थापित कर दिया। और जैसे ही पर्वत को स्थापित किया भगवान कृष्ण पर्वत के स्थापित करने के बाद जैसे ही मुक्त हुए तो गोप और गोपी और सारे जो उनके मित्रगण थे सभी भगवान कृष्ण की ओर दौड़ पड़े। कोई उनकी बलैया ले रहा है, कोई टीका कर रहा है, कोई उनके हाथ को सहला रहा है, कोई उनके पांव को सहला रहा है, कोई कहता है माँ कहती है बेटा तेरा हाथ दुख गया होगा, 7 दिन तक हाथ को ऐसे खड़ा रख, अरे भगवान का हाथ क्या दुखता है। पर देवासियों की भावना, ये हमारे हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ऐसे करके माँ की ममता, मित्रों की मित्रों का स्नेह, जो बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं उनको कोई उनका उपटन कर रही है, कोई उनका स्नान करा रही है, कोई उनको तिलक करा रही है, आसमान में स्थित देवता सिद्ध साध्य गंधर्व चारण भगवान की स्तुति कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। यात्रा क्यों की भगवान कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की, ये देखने के लिए इतनी भारी वर्षा हुई थी, इतना जल प्लावन हुआ था, उसके बाद मेरे ब्रजवासियों की कैसी स्थिति है, उनको रहने के लिए समतल भूमि उपलब्ध हो पाई या नहीं, उनकी खेती की क्या व्यवस्था होगी, नदियों से जल बह गया है, अब वो वहाँ पे खेती करने लायक भूमि की उन्हें रचना करनी है, गायों के लिए घास की क्या व्यवस्था होगी, चारे की क्या व्यवस्था होगी, इन सब व्यवस्थाओं को देखने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सामान्य है भगवान ने बलराम जी के साथ ब्रज की यात्रा की और जहाँ जैसी आवश्यकता थी उस प्रकार की निर्देश दिए। उनके साथ साथ सारे ब्रजवासियों ने एक दूसरे का सहयोग करने की इच्छा से यात्रा, जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा का उद्देश्य यही होता है हम सहयोग करें। इस प्रकार ये गोवर्धन पूजन गोवर्धन धारण की कथा हमें संदेश देती है, सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, हमें अपने कार्यस्थल अर्थात वर्क प्लेस को ही मंदिर के समान पवित्र और अपने कार्य को पूजा मानने का उपदेश देती है, वर्क संदेश देती है। वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप की भावना। सहयोग, सभी के सहयोग से, समाज के पूर्ण सहयोग से हम बड़ी से बड़ी विपत्ति को पार कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश भगवान की इस लीला के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। बोलिए गोवर्धन धारण महाराज भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो गिरिराज धरन की जय। जय जय श्री राधे। एक बार फिर से भगवान का नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।